ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
மகாராஜி நே கஹா யே மூர்த்தி ஆதி யே சாங்கல் கி தரஹ ஹை, நானா தோ கங்கா ஜல் மே ஹி ஹை, लेकिन आदमी को खड़े होने के लिए किसी न किसी आलंबन की जरूरत पड़ती है। जिस दिन तुम्हारे में इतनी ताकत हो जाए, जिस दिन तुम्हारे में इतना बल हो जाए, उस दिन फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इतनी सरलता से जो राजपुरोहित जी कह रहे थे, इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात कह देते थे कि बहुत कठिन से कठिन बात इतनी सरलता से कहते हैं। ये कोई व्यक्ति कह सकता है जो व्यक्ति स्वयं जिया हो। जो व्यक्ति जिया ना हो, वो व्यक्ति इस बात को कभी कितने तर्क दे दे, लेकिन बुद्धि कभी संतुष्ट नहीं होती। प्रेम कुटीर में एक कोई भगत रहता था, ऊपर देव कुमार नाम था उसका, वो लंदन में रहते थे। वो बात महाराज बड़े महाराज जी से जुड़े हुए वो लोग थे, प्रेमपुर जी महाराज से बहुत मानते थे। तो कुछ बाहर जाने की बात आई तो कन्हैयालाल जी भी बैठे हुए थे, हम भी पास में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने इतनी अच्छी बात कही। महाराज जी ने कहा, भाई देखो ऐसा है, खेल तो सब पांच भूतों का है, बस सजाने की कला है, बस बात बाकी है क्या। जो आदमी की संतुष्टि होती है ना, जैसे जगदीशपुर जी महाराज बता रहे थे कि भाई लाभ पांचव को तो पैदा हुए, लेकिन हिसाब किताब कब होता है? 31 मार्च को। मेरे को एक श्लोक याद आया भागवत का, जब परीक्षित बैठे हुए हैं और सुखदेव जी महाराज आते हैं, तो जन्म लेने का लाभ हुआ या घाटा हुआ, वहां पे सुखदेव जी कहते हैं, भागवत का प्रथम उपदेश है वो, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लेकर के लाभ हुआ या घटा हुआ, ये बात तो तभी पता लगती है यदि अंतकाल में नारायण की स्मृति आ जाए। यदि अंतकाल में नारायण की स्मृति आ गई तो ये समझ लो कि जन्म लेने से लाभ हो गया, और यदि अगले जन्म में कपूय चरणा कपूय योनिम आपद्देरन सुकरो वा कुकरो वा, यदि कुछ और बन गए तो जन्म लेने का मनुष्य जीवन का लाभ नहीं, क्या हो गया? घाटा हो गया। जो मूलधन था वो मूलधन भी हमने मनुष्य जीवन का लाभ क्या है। एक बात, तीसरी बात जो मैं बताता हूं आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखी हमने, महाराज जी की जो स्मृति थी ना, बहुत जबरदस्त स्मृति थी। शरीर छूटने के तीन दिन पहले पंचमी के दिन कुछ ऐसा था, हम लोग हरिद्वार गए, महाराज जगदीशपुर जी महाराज भी थे, हम यहां से गए तो फोन किया तो तो महाराज जी ने मंडलेश्वर जी को तीन बार रास्ते में फोन आया महाराज जी का, अच्छा अभी कहां पहुंचे, अभी कहां पहुंचे। हम लोग हरिद्वार पहुंचे लगभग रात को 11-12 बजे के आसपास। महाराज जी बैठे हुए थे, और फिर गए तो इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न तो थे ही हमेशा, इतनी तकलीफ में बुद्धि का सही रहना, ये बिना साधना के संभव नहीं है। इतनी बुद्धि स्वस्थ होना ये बिना साधना के संभव नहीं है। और जीवन की सरलता तो आपने देखी होगी, कपड़े कैसे पहनते थे, भोजन की बात जगदीशपुर जी महाराज करें। देखो साधु का जो जीवन होता है वो दूसरे के लिए एक आदर्श जीवन होता है, और आदर्श का अर्थ बता रहे थे आपको कि दर्पण है जिसके सामने खड़े होकर के आप अपने चेहरे के दोष देख सकते हो, दूसरे को देखने के लिए खाली दृष्टि की जरूरत होती है, दूसरे के दोष आप दृष्टि से देखते हो, लेकिन यदि अपने दोष आपको देखने हैं तो आपको दृष्टि और दर्पण दोनों चाहिए। और ये जो दर्पण है ना, ये भगवान ने सबको दे के रखा है। आजकल जाते हैं आप लोग, लोग जाते हैं यात्रा करने के लिए, माताएं जाती हैं इधर उधर, तो अपने पर्स में कुछ रखें कि नहीं रखें, शीशा जरूर रखती हैं। क्यों रखते हैं शीशा? कि हम जैसे हैं वैसे दिखते हैं कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए दर्पण की जरूरत है। ये जो मन है ना, यही दर्पण है। और इस मन को जो मार लेता है, इसको मारने का मतलब इसको जो जीत लेता है, उससे बड़ा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। समता इतनी थी, तितिक्षु व्यक्ति में ही समता हो सकती है। एक बारी की बात है, मैं आपको बताऊं, एक महात्मा थे, अभी परमादर्श मंडलेश्वरों के आचार्य हैं वो, स्वामी विद्यानंद जी महाराज, उनकी भागवत हो रही थी परमार्थ आश्रम में, सब सरोवर में। तो महाराज जी ने मेरे को कहा कि उनकी भागवत करानी है, तुम जरा उनके एक बारी उनको मिल करके आ जाओ। तो मैं उनको आमंत्रण देने के लिए, ऐसे महाराज जी ने याद किया, उनको बोलने के लिए परमार्थ आश्रम में गया। वहां गया, मिले, महाराज जी ने भेजा तो नहीं, तो अपने को कौन जानता है। महाराज जी की वजह से गया तो उन्होंने अंदर बुलाया, आश्रम में आए तो बड़े आदमी हैं वो, उनके साथ बहुत सारे भगत भगत आए, पंक्ति लगी, एक भगत उनके साथ में था, वो अचार लाया, वो तो अचार जो है त्यागमूर्ति जी महाराज की थाली में डाला और वो विद्यानंद जी महाराज की थाली में डाला। तो महाराज जी ने कहा इतने संत बैठे और है कि नहीं है? बोला नहीं, इतना ही है। तो महाराज जी ने अपनी थाली से वो अचार उठा दिया। महाराज जी के पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए, इतना जीवन का इतना जो व्यक्ति खया, क्योंकि साधुता में सबसे बड़ी चीज जो है वो सावधानी है। वो सावधानी जिस व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति अपने जीवन को निभा लेता है। अब महाराज जी की खासियत यही है, उनके अंदर जबरदस्त सावधानी थी। प्रमाद मैंने उनके जीवन में बिल्कुल नहीं देखा। हमारे शास्त्रों में कहा प्रमादो वै मृत्युम, आदमी की मौत कुछ और नहीं है, आदमी की मौत यदि कुछ है तो प्रमाद से बड़ी कोई मौत नहीं है। महाराज जी के जीवन में प्रमाद बिल्कुल नहीं था, दया इतनी थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। रमन रेती के कोई महात्मा एक बारी, महानंद उनका नाम था, 1978 की बात यह है, मैं नीचे जो आश्रम है उस आश्रम के गेट है ना, गेट के बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था और करीबन रात को 11:30 बजे कोई महात्मा आया। महात्मा आया, अब उसने नारायण हरि किया तो मेरे को नींद आ गई हुई, तो दो तीन बारी तो मैं जागा। मैंने कहा क्या है अभी? हमने कहा 11:30 बजे क्या गोट करना? तो महाराज जी ने मेरे को ऊपर से आवाज लगाई। महाराज बोले मोहन, अरे मैं तो डर गया। मैंने कहा क्या हो गया? गेट खोला मैंने, उस समय भंडार ऊपर था, तो बोला भंडार खोलो और देखो वहां भोजन है, महात्मा आए हैं। तो वहां एक थाली भोजन की लगी हुई थी। हम गए, प्रेम से वो महात्मा को भोजन कराया हमने। उस समय मैं महाराज जी के साथ में स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे जाता था वहां, तो साधना सदन का घाट नहीं था उस समय, साधना धाम का घाट था, तो वहां जाते थे। तो मैंने कहा सुबह सुबह महाराज जी डांटेंगे अभी मेरे को। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। क्या शाम को जब सब बात हो गई, स्वाध्याय पूरा हो गया, तो फिर शाम को महाराज जी फिर साधना धाम के घाट पे जाते थे, तो मैं महाराज जी के साथ जाता था। महाराज जी ने मेरे को कहा जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हम कहीं पाकिस्तान में घूम रहे थे, घूमते घूमते करीबन 2-1.5 दिन हो गया, हमको कहीं भोजन नहीं मिला। और भोजन नहीं मिला तो बस, भोजन नहीं मिले तो आपको मालूम है भूखे भजन न हुई गोपाला। रात के समय एक महात्मा कोई बैठे हुए थे, सिंध की बात है, वृद्ध महात्मा, पूरा शरीर ढका हुआ गया। मैंने कहा महाराज जी ओम नमो नारायण। उस संत ने हमसे पूछा अरे संत भोजन वोजन किया? तो मेरे उसमें करोगे भोजन कुछ ऐसा प्रसाद पाएंगे? तो कह रहे मेरे मुंह से ना निकल गया। महाराज जी कहे भूख तो बहुत लगी थी, क्योंकि वो देखा उन्होंने बहुत बूढ़ा महात्मा है। तो कहते हैं उन्होंने, उस महात्मा ने मेरे से कहा अरे आपके चेहरे को देख के तो ऐसा लगता है आपको बहुत भूख लगी है। और फिर कहते वो महात्मा ने पुराने बादाम जो है चुन करके रखे हुए थे, और फिर वो बादाम की खिचड़ी बनाई। फिर महाराज जी को उस समय लाइट वाइट कुछ नहीं थी, फिर महाराज जी कहते महाराज जी कहे तब से देखा कभी कोई संत आए तो हमने जिंदगी में ऐसा कोई महात्मा नहीं देखा, सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आपने प्रसाद पाया कि नहीं पाया। ये बात ऐसी नहीं आती जीवन के अंदर, तुम भी बोल सकते हो ये बात सुन करके आज से, लेकिन एक जब कहते हैं कि 12 साल गुरुजी की लंगोटी धोई और गुरुजी से कहा गुरुजी कुछ उपदेश करो, उन्होंने कहा बेटा हल्दी का नाम क्या है, रंग बदल है, क्या है, 12 साल लंगोटी धोने के बाद इतना ज्ञान हुआ कि हल्दी का नाम क्या है, फिर कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में वो 12 साल के बाद ये ज्ञान मिला। जो जीवन में ये अनुभूतियां होती हैं, ये जो अनुभूति होती हैं ये स्वयं प्रकाश होती हैं। साधुता किसी के देने से नहीं आती, साधुता ओढ़ने से साधुता नहीं आती, ये तो कहीं जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, तब जीवन में ऐसी साधुता फलित होती है। और महाराज जी की एक खासियत मैं आपको बताऊं, जो मैंने उनके जीवन में देखा, मैंने आपको कभी बताया कि परमात्मा ने मनुष्य को सब कुछ दिया, परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में यदि कोई सबसे सुंदर चीज भगवान ने बनाई तो क्या बनाई है मालूम है आपको, क्या बनाई होगी सबसे सुंदर चीज, सबसे सुंदर चीज भगवान ने बुद्धि बनाई है। अच्छा, आपको यदि किसी चीज से संतुष्ट होना है, बुद्धि जगत के किसी पदार्थ से संतुष्ट हो नहीं सकती, बुद्धि यदि कभी किसी से संतुष्ट होगी, सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बुद्धि से घटिया हैं। बुद्धि से यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो सृष्टा है, सुंदरतम सृष्टि यदि कोई है तो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। और बुद्धि यदि कभी संतुष्टि को प्राप्त करेगी तो बुद्धि सृष्टा से ही संतुष्टि को प्राप्त करेगी, बाद बाकी जितनी चीजें हैं सब बुद्धि से निकृष्ट है। आप लोग कभी शादी करने के लिए जाते हो तो अपने चाहते हैं अच्छी से अच्छी लड़की मिले, नहीं चाहते हो, किसी भी चीज को पसंद करते हो, आप चाहते हो या हमसे श्रेष्ठ हो, अपने से श्रेष्ठ चीज को आदमी पसंद करता है, अपने से घटिया चीज को आदमी पसंद नहीं करता। तो बुद्धि से यदि कोई श्रेष्ठ चीज है तो क्या है, बुद्धि से श्रेष्ठ यदि कोई चीज है तो वो सृष्टा है, परमात्मा है। तो और उस श्रेष्ठ चीज को वर्ण करके बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। तो महाराज श्री की एक हमने खासियत देखी, उनकी हमेशा परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, दृष्टा के प्रति, सृष्टा के प्रति ही उनके चित्त में आकर्षण रहता था, सृष्टि के किसी पदार्थ के प्रति उनके मन में ममत्व नहीं रहता था कभी नहीं। हमने उनका वो जो अंतिम में उन्होंने कुछ इच्छा होती है वो लिखते हैं, उसमें भी हमने देखा क्या व्यक्ति लिखता है, खंडनकार ने एक बात लिखी है, क्व ममत्वम मुक्षुणाम अनिर्वचनीय वादिनाम, मुमुक्षु जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के संसार के किसी पदार्थ के प्रति ममत्व, ये मेरा है ये बुद्धि नहीं होती। तो महाराज जी की ये खासियत थी, कभी किसी पदार्थ के प्रति उनके मन में ये बात नहीं थी कि ये मेरा है, ये ममत्व किसी पदार्थ के प्रति नहीं था। और जब किसी पदार्थ के प्रति ममत्व नहीं होता तो परमात्मा के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, सृष्टा के प्रति स्वाभाविक लगाव होता है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम
हरिओम। हर एक में प्रकाश है, मेरे में प्रकाश दिख ले। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो ये बातें हम सुनते हैं उसमें हम जिनके चरणों में बैठते हैं उनको हम हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं, और हमारा आदर्श होता है कि ऐसी जो गुरुवाणी हम सुनते हैं तो हमेशा हमारा सिर झुकता रहता है और हम ग्रहण करना चाहते हैं कि क्या श्रेष्ठतम चीज है। अभी जो श्रेष्ठ हम जिनको मानते हैं, जिनको हम वंदन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वही अपने श्रेष्ठ की बात करें तो उसमें कितनी कितनी गहराई होती है, कितना अपनापन होता है, कितना उन पर उनका आदर्श जो प्रेम रहा होगा वो रहा होगा कि जिससे प्रेरित होकर आज हम उनके चरणों में झुकते हैं, जो उनके आदर्श थे, उनके जो पूरे जीवन उन्होंने जिनके लिए समर्पण किया, ऐसे जो व्यक्ति श्रेष्ठ थे उनकी बातें सुनना यह बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी ने मोगरे की और दुर्गंध की बात बताई। महाराज जी अभी दिल्ली में, तो आज से रजा हो गई। पॉल्यूशन की जो खराब वहां हालत है दिल्ली में, तो आज से स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद है। इतनी अप्राकृतिक सृष्टि में हम जी रहे हैं, पूरा पॉल्यूटेड जगह में, हर इससे संसार में जहां भी हम जाते हैं तो यह चीज हमें महसूस होती है। पर जब भी यहां प्रेमपुरी में आते हैं और यहां सत्संग में जब भी बैठते हैं तो लगता है कि हम शेर के बच्चे हैं। महाराज जी ने कहा ना, शेर के बच्चे। ऐसे हम सत्संगी होकर जब बैठते हैं तो बड़ी खुशी रहती है कि एक संत के साथ हम विराज हैं, जो एक आदर्श है, और इसी श्रृंखला में हम हमेशा यहां स्वाध्याय के माध्यम से हो, प्रातः प्रवचन के माध्यम से हो, सायं गीता चिंतन माला के माध्यम से हो, व्याख्यान माला में हो, जो भी हम ग्रहण करते हैं वह अद्वितीय है। इसके लिए हम संतों को वंदन करते हैं कि ऐसे हमें शेर के बच्चे तो बना के रखा है कि जो एक सत्संगी करने का हमारे को एक जो ममत्व मिला है, जो प्रेम मिला है, जो आदर्श मिला है, उसको हम वंदन करते हैं। आज के विशिष्ट दिन पर संत लोग जो बता रहे उनका हम आशीर्वचन लेते हैं। पूज्य द्विचैतन्य जी महाराज, जिनको हम प्रातः प्रवचन में सुन ही रहे हैं, ऐतरीय उपनिषद में बहुत ही सुंदर प्रवचन 7:30 से 8:30, जो यहां ना आते हो और जो नए श्रोता है उनकी जानकारी के लिए 15 तारीख तक उनका प्रातः प्रवचन रहेगा। तत्पश्चात 8:45 से 9:30 पंचदशी पर स्वाध्याय हो रहा है, जो भी दिव्य चैतन्य जी महाराज करा रहे हैं। सायं प्रवचन में गीता चिंतन माला के अंतर्गत गीता अध्याय 13 पर दिव्य चैतन्य जी महाराज द्वारा 6 से 7:30 तारीख तक यह विशेष सायं प्रवचन हो रहा है, जिसका भी हम लाभ लें। ऐसे 3 प्रवचन की श्रृंखला पूज्य दिव्य चैतन्य जी महाराज बहुत सुंदर इससे हो रही है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। 16 तारीख से परम श्रद्धे जगदीशपुरी जी महाराज द्वारा ईशावासी उपनिषद पर प्रवचन होगा और स्वाध्याय प्रवचन भी जगदीशपुरी जी महाराज द्वारा होगा। तो यह एक बहती गंगा है, हम लोग एक पत्र और पुष्प की तरह उसमें हमें आ जाना है, उसमें और उस भाव में हमें बह जाना है, जहां हमें जो यह प्रवचन के माध्यम से जो भी अच्छी चीजें जानने को मिले, तो ऐसी वाणी हमें प्राप्त होनी है। तो यह सब जाहिरात मैंने आपके साथ की। अन्य जाहिरात के बारे में, आज कार्तिक सूद पंचमी शनिवार दिनांक 5 नवंबर, आज के श्री रश्मिति के यजमान है श्रीमती भागीरथी बेन छोटालाल सेठ की ओर से, श्रीमती सरस्वती धानुका की ओर से परम पूज्य त्यागमूर्ति श्री गणेशानंदपुरी जी महाराज के प्रागट्य दिन के अवसर पर, श्री लक्ष्मण नारायण आहूजा की ओर से श्रीमती लक्ष्मीबाई एन आहूजा की स्मृति में, श्री दिलीप भाई चंद्रलाल परिक की ओर से श्री रसंग डी परिक के जन्मदिन के अवसर पर, तथा श्री धीमत राय डी मेहता की ओर से श्रीमती मानिकबेन डी मेहता की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। आपसे निवेदन है कि पहले महिलाएं यहां से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए, संतों के दर्शन करते हुए फिर जाएंगे और बाद में पुरुष वर्ग आएंगे, अब शांति पाठ होगा।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर